ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता जताई है। ब्रिक्स देशों की गुरुवार को वर्चुअल बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक के बाद एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जारी हुए इस घोषणा पत्र में अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी संजय भट्टाचार्य इस बैठक का और ब्यौरा देते हुए कहते हैं,
On Afghanistan, understandably, there was a lot of discussion, and there is a reference to that in the joint statement, the New Delhi Declaration as well. Leaders called for refraining from violence and settling the situation by peaceful means in Afghanistan through an inclusive intra-Afghan dialogue so as to ensure stability, civil peace, law and order in the country. They also underscored the priority of fighting terrorism, including preventing attempts by terrorist organizations to use Afghan territory as terrorist sanctuary to carry out attacks against other countries. And in this context, I also mentioned what President Putin had mentioned in his remarks. And they also emphasized that the humanitarian in the declaration, that the humanitarian situation to uphold human rights, including those of women, children, and minorities. I may also add that President Bolsonaro, in his remarks, also referred to the central role of the UN Security Council in addressing the UN, the Afghan issue.
Sanjay Bhattacharya बताते हैं कि आतंकवाद से लेकर कोरोना तक के विषयों पर चर्चा हुई है।
COVID was one of the issues that figured in this declaration, and this was brought out in the that BRICS should be agenda setting for the post-COVID recovery. There was also the need for cooperation on the study of the origins of the SARS-CoV-2 virus under the auspices of the WHO. There was strong reference in the New Delhi Declaration to the BRICS Counterterrorism Action Plan as a measure for the implementation of the BRICS Counterterrorism Strategy. Leaders expressed strong condemnation of terrorism in all its forms and manifestations and committed themselves to combating terrorism in all its forms and manifestations again, and particularly of cross-border movement of terrorists and terrorism financing networks and of safe havens.
कोरोना महामारी ने सदस्य देशों को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि संक्रमण की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण बताते हैं कि नए आने वाले मामलों में गिरावट आ चुकी है।
ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं देश में, वो पहली जो कोविड की सर्ज हमने देखी थी उसके 50% से कुछ ही कम है। इसलिए जैसा हमने पिछली बार कहा था, हम अभी भी दूसरी सर्ज के बीच में हैं। वी आर स्टिल विटनेसिंग द सेकेंड सर्ज। सेकेंड सर्ज इज नॉट ओवर।
देश में आज से गणपति उत्सव की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ त्योहारी मौसम भी शुरू हो गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का फैलाव बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक टीका लगाने पर जोर दिया जा रहा है। राजेश भूषण बताते हैं कि टीकाकरण अभियान में पहले के मुकाबले काफी तेजी आ चुकी है।
जितने टीके हमने 30 दिन में मई में लगाए, उससे ज्यादा टीके हमने 7 दिन में सितंबर में लगा दिए हैं, और ये रफ्तार अनवरत जारी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले दिन त्योहारों के दिन हैं, उससे पहले हमें टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाना होगा। जो भी हमारी वल्नरेबल जनसंख्या है, उसको हम वैक्सीनेट कर पाएं, ये प्रयास होना चाहिए राज्यों का और भारत सरकार का एक साथ मिलकर। इस पर हमारे कदम जारी हैं।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल बताते हैं कि देश में पर्याप्त टीके मौजूद हैं। सभी से टीका लगवाने का अनुरोध करते हुए डॉक्टर पॉल कहते हैं,
जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लगाया, वैक्सीन उपलब्ध है, बहुत मात्रा में उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, और हमने इतने प्रदेश आज देखे हैं जहाँ पर तो 85% से भी ज़्यादा कवरेज हो गया है। तो ये रिक्वेस्ट है हम सब की तरफ से कि प्लीज़ अपना टीकाकरण शुरू करिए। 72 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं, स्पीड बढ़ी है, लेकिन जो रह गए हैं, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और हम सब की जिम्मेवारी है जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, उनको हम अपने उस तरीके से जोड़ें।
और अब चर्चा किसान आंदोलन की, जो पिछले 10 महीनों से जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन कुछ अन्य मुद्दों के साथ लगातार जारी है। इन दिनों किसान आंदोलन का केंद्र हरियाणा का करनाल बन गया है। किसानों का सिर फोड़ने की बात कहने वाले एसडीएम के निलंबन की मांग को लेकर किसान करनाल के सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि किसानों की जायज मांगे मानने के लिए सरकार तैयार है।
किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे।
सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं है। शनिवार को फिर से करनाल में महापंचायत आयोजित किया जाएगा। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।